ಮನೆಯಾ ಗೋಪಿಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವಾರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜಜನರಂಜನ ಯಮೋನತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ರಾಮ
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे राधा गिरिधारे राधे जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओमज्ञाद्विरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलिता शिवशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी जन्माष्टमी नजदीक आ रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, उनके प्राकट्य के पीछे तीन कारण हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां का अर्थ क्या है? साधुओं का दुख को निवारण करने के लिए। वैसे साधु है, भक्त है, उनका कोई दुख नहीं है। ऐसे बताया जाए, एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए तो ने कहा कि प्रभुपाद जी एक भक्त आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा क्यों? तो ये प्रभुपाद जी शिष्य ने कहा, इनके सेक्रेटरी थे, प्रभुपाद जी ये भक्त जो है बहुत दुखी है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर वो दुखी है तो भक्त नहीं है वो। तब प्रश्न आता है कि ये परित्राण है साधु नाम, साधु है तो उनको दुख कहां से है? ये कौन सा परित्राण, कौन से दुख से परित्राण करने चाहते हैं? भगवान प्रकट होते हैं, साधुओं का ये दुख है वो आध्यात्मिक दुख है जिसको विरह कहा जाता है। भगवान का जो विरह है वो दुख से उन साधुओं को मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। महान भक्त भगवान के और याचना करते हैं, भगवान आप आइए, प्लीज कम एंड प्रोटेक्ट मी। तो ये साधुओं को परित्राण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय दुष्कृताम का अर्थ है दुष्कृतियों को नाश करने के लिए, असुरों को राक्षसों को नाश करने के लिए आते हैं। तीसरा कारण क्या है, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। वैसे उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को अगर धर्म की स्थापना करना होगा तो कोई आचार्य को भेज देते, आप ही धर्म की स्थापना करो, खुद की आने की क्या जरूरत है। और कुछ कह सकते हैं कि अगर भगवान को असुरों को वध करने भगवान को आने की क्या जरूरत है, वो तो गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हुए सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, अखिलात्म भूतो गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो। गोलोक वृंदावन धाम में निवास करने के बाद भी वो सबके जीवों के सब हृदय सब लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में है। अगर वो परमात्मा हृदय से निकल जाए तो मर जाता है, चाहे कितना ही बड़ा असुर क्यों ना हो, उनको ये सब युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा षड्यंत्र रचा के कैसे सब लोगों को वानर सेना को लेके मारना, ये सब रावण की क्या जरूरत है। रावण को इस प्रकार मारने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान रामचंद्र रावण के हृदय में तो है परमात्मा के रूप में, अगर वो निकल जाए खत्म तो क्यों करते हैं, क्यों भगवान प्रकट होते हैं। असुरों को वध करना है तो रिमोट में भी कर सकते हैं। तो भगवान प्रकट होते परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का जो परित्राण करने के लिए प्रकट होते हैं। एक बार अकबर बीरबल के बीच में चर्चा हुआ, अकबर ने कहा कि आप लोगों का भगवान को आना पड़ता है क्या असुरों को मारने के लिए, हमारा भगवान जो है उधर ही अपने धाम में रहते हैं, वो कभी नहीं आते, ऐसा उन्होंने मजाक में कहा। तो बीरबल ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं आपको शिक्षा दूंगा। तो दो तीन महीना बीत गया, ये सब बातें भूल गए थे, लेकिन बीरबल को याद था। तो अकबर बीरबल और बहुत सारे उनके सैनिक और अकबर का सारा परिवार, उनके पुत्र पुत्रवधू और उनके उनके पोता सब वो एक नौके में पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे। तो बीरबल ने कहा अकबर को, आपका पोता बहुत सुंदर है। अकबर ने कहा चलो लो थोड़ा सा प्यार करो उनसे। तो बीरबल उस अकबर के पोते को गोद में लिया, छोटा सा शिशु था, लिया और नदी में फेंक दिया। तो अकबर एकदम घबरा गया, तुरंत तो नदी में कूद के तैरते जिकाया और उस बच्चे को बचाया और बहुत गुस्से से कहा, तुमने क्या कर दिया, मेरे पोते को नदी में फेंक दिया। तो अकबर को मालूम था बीरबल कुछ भी करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। अकबर शांत के पूछा कि क्यों किया बताओ, इसमें इसके पीछे तुम्हारा क्या है, क्या उद्देश्य क्या है। तो बीरबल ने कहा अकबर को, आपका पोते से आप बहुत प्रेम करते हो तो आप, मैंने पोते को डाल दिया नदी में, लेकिन इतने सारे सैनिक हैं, आप उन सैनिकों को आदेश दे सकते थे, जाओ मेरा पोता नदी में है, मैं आदेश देता हूं जाके उसके बचा के लेके आओ, आप खुद क्यों गए। अकबर ने कहा तो मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं ना, तो मैं किसी को थोड़े ना सौंप सकता हूं। तो बीरबल ने कहा यही तो भगवान हमारा है कि वो हमारा भगवान जो है हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें भाव सागर में गिर पड़े हैं तो इससे स्वयं आके हमको उद्धार करने आते हैं। तो ये कृष्ण का विशेषता है, विशेषता ये है भले ही हम कृष्ण को भूल गए लेकिन कृष्ण हमको नहीं भूलेंगे, वी आर फॉरगॉटन कृष्ण, इसलिए तो इधर है। कुछ दिन मिला किसी ने कहा रोजी मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, मैंने कहा अगर आप सच्चा आदमी होते तो इधर होते ही नहीं, आप ये शरीर नहीं मिलता, गोलोक वृंदावन धाम में होते, झूठे हो इसलिए इधर हो, जन्म इसलिए मिला है नहीं तो दिव्य शरीर होता, सच्चिदानंदमय शरीर होता, भगवान की लीला में भाग लेता। तो इस जगत में कोई सच्चा नहीं है, सब झूठा है, सब बदमाश है, तभी तो इधर आए। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं तो दिल का साफ हूं मासूम हूं, ये सब फालतू बातें हैं, तो ये शरीर ही सबूत है मैं पापी हूं, मैं झूठा हूं। तो भगवान आते हैं किसके लिए आते हैं, हमको उद्धार करने के लिए आते हैं, उनका मुख्य कारण यह है, ये मुख्य कारण है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे कभी क्लास में, लेकिन आज का विषय वस्तु ये मुख्य कारण नहीं है। भगवान की प्राकृति का मुख्य कारण क्या है, भक्तों का परित्राण। अभी आज चर्चा करेंगे भगवान असुरों को क्यों मारते हैं, क्योंकि असुरों को मारना ये भगवान की विशेष लीला है। ये ध्यान में रखिएगा, गोलोक वृंदावन धाम में कोई पूतना, कोई शकटासुर, कोई देनुकासुर, वो सब नहीं है उधर। अभी इस भौतिक जगत में भगवान अवतार लेने के पीछे अंतरंगिक कारणों में से एक कारण असुरों को वध करना। वैसे भगवान की प्राकृति के पीछे दो विशेष प्रकार के कारण होते हैं, एक है अंतरंगिक कारण, दूसरा है बहिरंगिक कारण। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्राकृति के विषय में आपने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु के प्राकृति के पीछे अंतरंगिक कारण ये हैं, तीन हैं, बहिरंगिक कारण अनेकों हैं, लेकिन मुख्यतः जीवों को उद्धार करना, हरिनाम प्रदान करना। वैसे कृष्ण के प्राकृति के पीछे भी अंतरंगिक और बहिरंगिक कारण होता है। अंतरंगिक कारण और बहिरंगिक कारण के बीच में अंतर ये है, अंतरंगिक कारण करते कृष्ण अपने निजी स्वार्थ के अनुसार क्यों प्रकट होते हैं, अपने निजी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो प्रकट होते हैं, कृष्ण के लिए कृष्ण जो प्रकट होते हैं वो अंतरंगिक कारण माना जाता है। जो हमारे लिए जीवों के दृष्टिकोण से हमारे लिए कृष्ण को प्रकट होते हैं उसको बहिरंगिक कारण कहा जाता है। जैसे कृष्ण राधा रानी का, माधुरी का या भक्ति का महिमा को जानना चाहते हैं तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये जो कारण है राधा रानी का प्रेम का महिमा को जानना, इसके लिए कृष्ण प्रकट होना, ये जो राधा रानी का प्रेम का महिमा को जानना, ये जो कारण क्या है, अंतरंगिक कारण, क्योंकि कृष्ण जानना चाहते हैं। लेकिन हमको हरिनाम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, ये क्या है, बहिरंगिक कारण हुआ। वैसे कृष्ण इधर क्यों प्रकट हुए, ये अंतरंगिक कारण है। यानी कृष्ण के लिए कृष्ण क्यों प्रकट हुए, यानी अपने लिए सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं भौतिक जगत में, मैं इधर क्यों लीला करूं, ये तो हमारे जीवों को उद्धार करने के लिए तो बहिरंग कारणों, अंतरंगिक कारणों में से कारण ये है। ऐसे बहुत गुही है, गुप्त है। भगवान जब गोलोक वृंदावन धाम में अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं, एक विशिष्ट लीला होता है, उसको रास लीला कहते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में अनेकों गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, लेकिन उस रास लीला में अनेकों अनेक प्रकार के रस को आस्वादन कर रहे हैं। ये जो परकीय भाव इति व्रजते प्रचार, व्रज में परकीय भाव का प्रचार है। कृष्ण अनेकों गोपियों के साथ या कोई गोपियों के साथ उनका विवाह जो है वो नहीं हुआ, वो न हुआ होता तो परकीय रस नहीं होता। तो परकीय रस जो है आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च रस है, उसको भगवान गोलोक वृंदावन धाम में आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन उस परकीय रस का जो विशिष्टता है वो आस्वादन करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। और इधर जो भौमा वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन धाम से अभिन्न है, जिसको गोकुल वृंदावन कहा जाता है, उसमें प्रकट होते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में है उसको गोलोक वृंदावन धाम कहा गया है। और अभी आप जो जाते वृंदावन धाम वो गोकुल वृंदावन है। तो गोकुल वृंदावन में प्रकट होने के पीछे अंतरंगिक कारणों में से एक ये है, जो ये जो रासलीला है, जो सर्वोच्च लीला है, उसमें भगवान कृष्ण ये चाहते हैं उसके अंदर थोड़ा विशिष्टता हो, स्पेशलिटी हो। क्या है विशिष्टता? जैसे सारे गोपियां गोलोक वृंदावन धाम में अविवाहित है, कोई गोपियों को कोई पति नहीं है उधर, तो भगवान उनके साथ रास कर रहे, तो एक तो ये रास लीला का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन गोपियां विवाहित हो और अपनी पतियों को छोड़ के उनके पास आके रास करे, ये विशिष्टता कब होगी? वो गोलोक वृंदावन धाम में संभव नहीं है। इसे भगवान इस भौमा वृंदावन धाम में ऐसा एक विशिष्ट लीला को आयोजन करते हैं योग माया की शक्ति के द्वारा। गोपियों का विवाह हुआ रहता है और जब भगवान रास लीला करते हैं उस समय अपनी पतियों को, अपने घर को सब छोड़ के भगवान के साथ रास करने आते हैं। ये जो कार्य है आध्यात्मिक या जो गोलोक वृंदावन धाम में संभव नहीं है। अब देखिए भगवान की ये जो भौमा वृंदावन में जो लीलाएं हैं वो विशिष्टता है, स्पेशलिटी है। जो गोलोक वृंदावन धाम में भी संभव नहीं इधर होता है, इससे भगवान इधर प्रकट होते हैं, अंतरंगिक कारण है। और एक है अंतरंगिक कारण जिसको हम चर्चा करते हैं, वो असुरों की वध करने के लिए, क्योंकि असुर नहीं है गोलोक वृंदावन में, कोई असुर नहीं है। पूतना शकटासुर ये सब कैरेक्टर ये सब कहां से आए, ये कहां है, ये जो भौमा वृंदावन की लीलाएं हैं, गोलोक वृंदावन नाम की लीला नहीं है। क्या आप ये सोचते हो शकटासुर है गोलोक वृंदावन धाम में? नहीं, वो शकटासुर का जो लीला है भगवान इधर ही करते हैं, इधर ही रचाते हैं। तो इसलिए एक तरीके से असुरों को वध करना भगवान का गौण कारण यानी परित्राण ऐसा विनाशांश दुष्कृतान भगवान का गौण कारण होने पर भी उसके अंदर कुछ विशिष्टता है, स्पेशलिटी हो क्या, आज जानने के लिए प्रयास करेंगे। यानी दूसरे शब्दों में भगवान असुरों को क्यों वध करते हैं, वाई ही किल्स द डेमन्स। सबसे पहला कारण प्रसिद्ध कारण है, प्रसिद्ध कारण आप सब जानते हो, भागवत में ही वर्णन किया गया शुरुआत में, जैसे कुलशेखर राळवार अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, जयति जयति देवो वृष्टिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। पृथ्वी का जो भार है उसको नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। आप सबको मालूम है कि भागवत की शुरुआत में ही कहा गया दसवां स्कंद में भगवान की प्राकृति के पीछे जो मुख्य प्रसिद्ध कारण है ये क्या है कि पृथ्वी मां बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि उसके ऊपर पाप का भोजा बढ़ गया था। सात माताओं में एक माता है हमारी पृथ्वी मां। हम सोचते हैं हमारी माँ ये माँ है, नहीं, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, भूदेवी, भूमि माता, गाय, ये सब हमारी माता है, धात्री हमको जो देखभाल करती है, ये सब सात माताएं शास्त्र में वर्णन है। उनमें से एक माता है पृथ्वी। मां को बच्चे का भी भोजा नहीं होते, लेकिन भले ही दस बच्चे क्यों ना हो मां के लिए कोई तकलीफ नहीं है, सबसे प्रेम करती है, लेकिन भोजा तब है अगर उस बच्चों में से अगर कोई पापी बच्चा हो जाए, जो पाप प्रवृत्ति वाला हो जाए वो भोजा है, जो शैतान हो जाए तो तकलीफ है। पहले जाते जानते होंगे अब गांव में आपके दादा या परदादा जो भी होंगे गांव में, उनके कितने बच्चे हुआ करते थे, आठ दस तो मिनिमम, अभी एक भी भारी पड़ता है। क्यों? वो आठ दस को अच्छे से देखभाल करते थे, सब प्रेम से रहते थे, कोई कभी भोजा नहीं था। ये दस बच्चों को देखभाल करना, कोई मां को कभी भोजा नहीं लगता था। अभी एक बच्चा भी भोजा हो गया, क्यों? क्योंकि शैतान है। अभी वो शैतान क्यों निकला पहले? क्योंकि टीवी देखते हैं माता पिता, क्योंकि जो टीवी में चल रहा है वो उनकी मानसिकता में है, जो उनके मन में है वही उसी प्रकार का संतान। तो पृथ्वी मां को बहुत भार हो गया था, क्योंकि असुरों का प्रभाव की वजह से बहुत पाप का भोजा बढ़ गया था। तब पृथ्वी मां गाय का रूप धारण की और ब्रह्मा जी के पास भी अपनी दुख की कहानी बताई, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप विष्णु पत्नी हो, पृथ्वी मां जो है विष्णु की पत्नी है, और पत्नी भार्या का संरक्षण करना पति का कर्तव्य है। भले ही कोई व्यक्ति संरक्षण करना करने का सामर्थ्य होने पर भी किसी और की भार्या या पत्नी को संरक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार केवल पति के पास है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तो सृष्टि करता हूं, अभी आपको पालन चाहिए, पालन करने वाला विष्णु है, ऐसा लगता है उनको पालन करने के लिए इंद्र का सहायता भी लेंगे। चलो इंद्र के साथ में सारे देवताओं को लेके ब्रह्मा जी जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि इस पालन की व्यवस्था में असुरों को वध करने के भी कार्य है, जो नाश करने का कार्य जो शिव जी करते हैं, इसलिए हो सकता है कि भगवान जो है शिव जी को या असुरों को नाश करने के कार्य में नियुक्त करें, तो शिव जी को भी साथ में लेके गए। यानी इंद्र और सारे देवता और शिव जी को साथ में ब्रह्मा जी लेके गए, साथ में पृथ्वी मां गाय का रूप धारण की, और सब गए क्षीरम तीर पयोनिधे, जो पयोनिधि या जो क्षीर सागर है उधर उसके तट में खड़े होके वो सब पुरुषम पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सब लोगों ने स्तुति की। तो भगवान ने हृदय में, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में कुछ संदेश प्रकाशित किया, चार उपदेश दिए उन्होंने, चार आज्ञा दी। ब्रह्मा जी को कहा आप चिंता मत करो, मैं जानता हूं आप सब लोग इधर क्यों आए हो, अभी कुछ ही समय में प्रकट होने वाला हूं, इसलिए मेरा आदेश यह है मेरी प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट होंगे, सारे देवता लोगों कहो कि आप वो वंश यदुवंश पृथ्वी में जाकर प्रकट हो जाए, और संभवंतु सुरस्त्रिया, ये देवताओं की जो पत्नियां हैं वो सुरस्त्री हैं, उनको भी प्रकट होने के लिए कहिए, और दुर्गा जी भी प्रकट होगी, और इसके द्वारा मैं असुरों को नाश करूंगा और पृथ्वी का भार को नाश करूंगा। यानी भगवान की प्राकृति के पीछे, असुरों को मारने के पीछे सबसे पहला या प्रसिद्ध कारण है तो क्या है, पृथ्वी का जो असुरों का भार हो गया तो पृथ्वी के ऊपर उस असुरों का भार को कम करने के लिए भगवान असुरों को वध करते हैं, ये पहला कारण हुआ। अभी दूसरा कारण, भगवान असुरों को क्यों वध करते हैं, भगवान कुछ भी करते हैं दूसरों को भलाई के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि भगवान को बुरा करना नहीं मालूम, किसी के साथ धोखा करना ये सब चीजें उनको उनके है ही नहीं, वो कुछ भी करते हैं वो लोगों के हित के लिए करते हैं, जगत हिताय, सारे जगत को हित करने वाले हैं भगवान, सारे जगत मतलब उसमें असुर भी आ गए हैं, असुरों को क्यों मारते हैं, क्यों वध करते हैं, उनका हित के लिए, जैसे मां बच्चे को मारती है किसके लिए मारती है, द्वेष से मारती है, गुस्से से मारती है, नहीं उनके हित के लिए मारती है, बच्चे बच्चा अगर दुश्मन ये शैतान हो गया, पढ़ाई नहीं करता है तो बराबर व्यवहार नहीं करता है, वो बच्चे के हित के लिए मां डांटती हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण असुरों को असुरों का हित के लिए, उनका उद्धार के लिए मारते हैं। तो परीक्षित महाराज आगे इस भागवत में वो बताते हैं कि चार कारण बताते हैं मैं कृष्ण के बारे में क्यों सुनना चाहता हूं, चार कारणों में से अंतिम कारण यह है, परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, मैं कृष्ण के बारे में इसलिए सुनना चाहता हूं, मैंने इस जगत में देखा है, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी का कोई किसी का दुश्मन है, वो दुश्मन के साथ दुश्मनी करता है, अगर कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उसके साथ द्वेष करता है, नहीं तो उससे उधर से निकल जाता है, लेकिन शत्रुओं को दुश्मनों का हित सोचने वाला बहुत कम लोग हैं, कोई सोचता नहीं है। मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, आपको मारने के लिए आता है, आप उधर से भाग जाओगे, नहीं तो उसको मारने के लिए प्रयास करोगे, उसके प्रति गुस्सा करोगे, उससे द्वेष करोगे, ईर्ष्या करोगे, लेकिन कभी यह नहीं सोचेंगे उनका भलाई क्या कैसे करूं मैं, ये कृष्ण का स्वभाव है। असुर लोग कृष्ण को मानना चाहते हैं लेकिन कृष्ण क्या सोचते हैं, मैं उनका भला कैसे करूं, हाउ कैन आई डू बेनिफिट टू हिम, मैं उनका भलाई इनकी भलाई किसमें है। तो भगवान श्री कृष्ण असुरों को वध करके असुरों को उद्धार कर देते हैं, क्योंकि उनका उद्धार का कोई और उपाय नहीं है, तो भगवान सोचते हैं कि इनको मारना ही उनका एकमात्र उपाय है ताकि उसका उद्धार हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, जानने के लिए प्रयास कीजिए, जब स्वयं कृष्ण जब कोई असुर को वध करते तभी उस असुर का उद्धार होता है, जब वही कृष्ण अन्य अवतारों में प्रकट होते हैं, उन अवतारों में असुरों को वध करते हैं तो तब असुरों का उद्धार नहीं होता है। वही कृष्ण जब नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, जब प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ था नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र को रावण को वध किए, जब रावण का उद्धार हुआ नहीं हुआ। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जब उनका मृत्यु होता है, जब उनका वध होता है, तब ही उस असुर का उद्धार होता है। यह खास चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, अन्य वैष्णव आचार्य भी इस बात को नहीं जानते या प्रकाशित नहीं किए, नहीं जानते की बात नहीं है, प्रकाशित नहीं किए, केवल चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को प्रकाशित किया, जब तक कोई असुर कृष्ण के हाथों में नहीं मरता तब तक उसका उद्धार नहीं होता है। तो खास कृष्ण आते हैं, चलो अभी इसका वोल्टेज बहुत बढ़ गया है, अभी उसको कंट्रोल में नहीं है, चलो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, अभी मुझे स्वयं जाके उसको मारना पड़ेगा तभी उसको उद्धार, क्योंकि कृष्ण केवल उद्धार करना ही जानते हैं। जो असुर जो जैसे पूतना को उदाहरण दिए, पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनको धात्री का स्थान प्रदान किया। पूरा भागवत इसके ऊपर आधारित है। यह अद्भुत स्वभाव है कृष्ण का कि पूतना उनको मारने के लिए आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण ने क्या देखा, पूतना जहर ला के मुझे मारने के लिए आई है, राक्षसी है, बहुत सारे उन्होंने बालकों को वध किया है, खेचरी है, ये सब नहीं देखा। देखा पूतना कितना अच्छी है, देखो यशोदा का नकल की है। खाली वही बात देखा कृष्ण ने, हे मेरे यशोदा का नकल किया है, महान भक्ति हो, चलो उसको उद्धार कर देते हैं। ठीक है, एक भक्त का नकल करने में ही कितना बड़ा भक्ति है, तो भक्त बनने में कितना बड़ा बात है। लेकिन तो कृष्ण ने क्या किया, पूतना को उद्धार किया। इतना राक्षसी है, वैसे किसी का लाश जलता है तो बदबू आता है, लेकिन जब पूतना 8 मील लंबी उनका शरीर था, तो कैसे जलाएंगे, काट काट के व्रजवासियों ने जलाया और पूरा व्रज में इतना सुंदर सुगंध फैल गया, पूतना के शरीर से इतना सुंदर सुगंध उत्पन्न हो रहा था। वैसे लाश जो है वैसे उसको जलाओगे तो बास मारता है, और भी राक्षसी का लाश तो और बास मारता ही होगा, लेकिन सुगंध आ रहा था। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने पूतना को स्पर्श किया, उनकी चरण कमलों का चरण चिन्ह पूतना के शरीर में गिर पड़े, इसलिए पूतना का शरीर कृष्ण के स्पर्श से इतना अद्भुत हो गया, उनका शरीर से सुगंध आने लगा। तो भगवान कृष्ण असुरों को वध करने के पीछे दूसरा कारण क्या है कि असुरों का उद्धार, ही वॉन्ट्स टू डिलीवर देम। अभी असुरों को वध करने के पीछे तीसरा कारण सुनिए। तीसरा कारण क्या है, भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर कोई भक्त को परेशान करता है, भगवान सहन नहीं कर सकते, सब कुछ सहन कर लेंगे। अगर कोई भगवान उनको भगवान को भी परेशान करता है, भगवान सहन कर लेंगे, चलो। अगर कोई नास्तिक के समझ लीजिए बोलते हैं कि भगवान नहीं है, फिर भी भगवान सहन कर लेते हैं। अगर समझ लीजिए कोई आपके सामने आके बोले तुम नहीं हो, इधर तुम मर गए हो, गुस्सा आता है कि नहीं, लेकिन भगवान कोई चिंता नहीं करते, ठीक है, उसको भी हवा पानी दे देते, चलो हवा पानी सब कुछ दे, सबको देते, असुरों को भी देते, नास्तिकों को भी देते हैं। लेकिन जब ये असुर भक्तों को परेशान करते हैं, भगवान सहन नहीं करते। ठीक है, अपने असुर स्वभाव को लेकर कोने में पड़े रहो ना, भक्तों को क्यों तकलीफ देते हो। ये असुर का स्वभाव होता है, नास्तिकों का स्वभाव होता है। भले ही अपना उनका सिद्धांत लेके अपने शांति से नहीं बैठेंगे, अगर मान लो कोई कृष्ण का भजन करता है, उसको जाके परेशान करेंगे, उसे द्वेष करेंगे। भक्तों से द्वेष करना असुरों का स्वभाव है, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते कि ये जो है कृष्ण का गुणगान कर रहा है, कृष्ण का नाम जप कर रहा है। रास्ते में बहुत सारे निकम्मे लोग हैं, लेकिन अगर कोई भक्त जप करते हुए जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं, सर कोई काम धंधा नहीं है, दिन में जप करता रहता है, क्या देश के लिए कुछ करो। कितने लोग दारू पी रहे और बहुत सारा गलत कार्य कर रहे, वो चलता है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ। जब कोई लड़का मंदिर में जाएगा, जप करना शुरू करता, गीता पढ़ता है, तो पिताजी बोलते क्या कर रहे तुम, उसका दूसरा लड़का टीवी देख रहा है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही जप करना शुरू किया, तुरंत उसके प्रति द्वेष, बेकार हो गया है, कुछ काम नहीं करता, क्या हो गया उसको, पागल हो गया है। जब मैं शुरुआत में जब भक्ति में जप माला करना शुरू किया, एक बार घर गया तो सबसे पहला साक्षात्कार यही हुआ कि अचानक ये लोग इतना मुझसे प्रेम करने लगे। इतना मैंने इतना साल उनके साथ में इतना समय गवाया, फालतू में टीवी देखा, वो किया, वो सब कुछ किया, उस समय बिल्कुल कुछ नहीं बोले, मैंने तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन जब जप कर रहा हूं, भगवद गीता पढ़ रहा हूं, तुम बोलते कि ये सब अभी करना नहीं चाहिए, बाद में करना चाहिए, ये सब टाइम वेस्ट है। अब देखिए, असुरों का स्वभाव होता है कि वो भक्तों से भक्ति करते हुए देख नहीं सकते, दे कैनॉट टॉलरेट डूइंग भक्ति। दुनिया में इतना सारा गलत कार्य हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है, लेकिन कोई भक्त भक्ति करने लगा तो सारा लोग बोलते क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है सब करने की, छोड़ो ये सब। क्योंकि असुर का स्वभाव है भक्तों से द्वेष करना, तो भगवान ये देख नहीं सकते। तो इसलिए भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होकर असुर को वध करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, भक्तों को मारना चाहते हैं, तकलीफ देते हैं, और भगवान उसको सहन नहीं कर सकते। कुछ हद तक सहन करेंगे, बाद में सहन नहीं करेंगे। ये भगवान असुरों को वध करने के पीछे तीसरा कारण है, भक्तों का संरक्षण करने के लिए असुरों को वध करती तीसरा कारण है। चौथा कारण थोड़ा सा जटिल कारण है, शांति से सुनिएगा। असुरों का स्वभाव होता है कृष्ण से द्वेष करना, और असुरों का यह स्वभाव भी होता है वो चाहते हैं कि कृष्ण हमसे द्वेष करे, और वो चाहते हैं कि कृष्ण मुझसे युद्ध करे। मान लीजिए कोई ऐसा एक व्यक्ति है, आप देखा भी होगा, वो किसी द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उसके साथ साथ वो चाहता है कि कब मौका मिले उसको मारूं, मैं उससे झगड़ा करूं। वो झगड़ा करने के लिए वो भी झगड़ा के लिए तैयारी होना चाहिए कि नहीं, तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा वो मौका ढूंढता है कब ये गुस्सा करके मेरे पर झगड़ा करे तब उसको मैं मारूं। असुर हमेशा यही देखते हैं कब कृष्ण के साथ झगड़ा हो जाए तब उसको मारेंगे हम, क्योंकि उनसे ईर्ष्या करते हैं। भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण में सब कुछ है, सब चीज उससे उत्पन्न होता है, ऐसा कोई चीज नहीं जो भगवान में नहीं है, हर चीज भगवान का है, लेकिन भगवान में एक चीज नहीं है, वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या और द्वेष नामक चीज भगवान में नहीं है। और साथ साथ में भगवान ने कहा कि ये यथामाम प्रपद्यन्ति तामसते वजामि हम, जिस प्रकार लोग जिस भावना से मेरे पास आते हैं मैं भी उसी भावना के अनुसार उनके पास पेश आता हूं। अभी असुर लोग क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते, ईर्ष्या की भावना से आते हैं, तो भगवान को क्या करना पड़ेगा, असुरों के प्रति ईर्ष्या करना पड़ेगा, उनसे द्वेष करना पड़ेगा। लेकिन भगवान में ईर्ष्या और द्वेष तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया कृष्ण को भी, मेरे पास ईर्ष्या नहीं है द्वेष नहीं है, लेकिन वो चाहता है मैं द्वेषी बनूं, मैं ईर्ष्यालु बनूं। उपनिषदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, सारे जीवन जीवों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान, यो विदधाति कामान, सारे लोगों को कामना पूर्ण करना भगवान का कार्य है। अभी एक जीव है, ये असुर है, वो चाहता है कि भगवान द्वेष करे, अभी वो कामना को कैसे पूरा करेंगे। अब देखिए ये असुर लोग भगवान को किस प्रकार, कृष्ण को कौन सी प्रकार की तकलीफ में डाल देते हैं। जैसे कोई भक्त आके मांगता है भगवान गाड़ी दो वो दो, तो ठीक है ले लो भाई चाहो, लेकिन असुर बोलता है कि भगवान आप द्वेषी बनो, कैसे बनेंगे अभी। तब भगवान ने एक योजना किया, ताकि मैं तो द्वेषी व्यक्ति नहीं हो सकता, ईर्ष्यालु नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप में मैं द्वेषी व्यक्ति हूं या ईर्ष्यालु हूं करके नाटक जरूर कर सकता हूं, और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं ऐसा प्रतीत कर सकता हूं कि मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो ये भगवान असुरों की जो इच्छा है युद्ध करने की जो इच्छा है कृष्ण से, या कृष्ण से झगड़ा करने की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए, या असुरों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान असुरों को वध करते हैं, उसको फाइटिंग करते हैं। सबसे पहला सृष्टि हुआ तो सबसे पहला यही कार्य हुआ, भगवान के जो नाभिकल में से जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट होने के साथ साथ में भगवान की दो कान से दो गंदगी के टुकड़े गिर पड़े, वो दो असुर के रूप में प्रकट हुए, इनका नाम था मधु और कैटभ। और जैसे मधु और कैटभ प्रकट हुए तो उनको मालूम था हम इसी से प्रकट हुए, तो ये असुर थे। असुर का अर्थ है कि वो भगवान से द्वेष करते हैं, तुरंत भगवान से द्वेष करने लगे, सोचा कि इनसे इनको मारना है, तो मारेंगे कब, जब फाइटिंग होगा तब वो तपस्या करने लगे। तो भगवान प्रकट हुए इनके सामने, क्या इच्छा है, क्या क्या चाहिए आपको, देखा हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हम आपको मारना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है युद्ध करूंगा। मधुर केटम ने कहा नहीं हमको दूसरा वरदान चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक है ले लो, हमको युद्ध करने का शक्ति भी दो आपको मारने का शक्ति भी दो। भगवान ने कहा ठीक है ले लो। मधुर केटम ने सोचा कि ये फुल प्रूफ होना चाहिए, युद्ध करने से पहले हमको सेफ होना चाहिए। आप हमको जहां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है, जिस जगह ये आठ चीजें हैं यानी भौतिक वस्तु, उधर हमको मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है। बड़ा फाइटिंग चला। तो भगवान का कोई रुचि नहीं था उनसे युद्ध करने का, लेकिन असुर बोलता है कि युद्ध करो, मेरी इच्छा है, तो भगवान को करना पड़ेगा। यानी असुरों का इच्छा को पूर्ण करने के लिए, असुरों के अंदर द्वेष की भावना है, उस देव की द्वेष की भावना के वजह से असुर भी चाहते भगवान भी मेरे से द्वेष करे, तो इसलिए भगवान एक नाटक करते हैं, असुर तुमसे मैं द्वेष करता हूं, युद्ध करने की इच्छा है, मैं युद्ध करने की इच्छा को पूर्ण करता हूं। चलो तो ये कौन सा कारण हुआ? चौथा कारण हुआ। अब इसने पांचवा कारण, भगवान असुरों को क्यों मारते हैं? जब असुरों को जब मारते हैं भगवान, मारने के पहले तो युद्ध होता है, फाइटिंग होता है कि नहीं? जब ये फाइटिंग होता है, आपने देखा होगा कोई पिक्चरों में हीरो और विलन जो फाइटिंग करते हैं, तो जब वो हीरो आके विलन को एकदम मुक्का मारता है तो विलन गिर जाता है, तो बड़ा मजा आता है, फाइटिंग सीन अच्छा लगता है लोगों को, खासकर बच्चों को अच्छा लगता है। बचपन में जब माता पिता सब लोग टीवी देखते थे, मैं नहीं देखता था, उनको बोल के रखता था फाइटिंग सीन आए तो बुलाना अंदर, देखना अच्छा था। तो ऐसे भक्तों को भी मजा आता है भगवान और असुरों के जो फाइटिंग सीन जब होता है ना, तब विशेष मजा आता है। अब देखो जब रामायण चलता है तो इंतजार करते कब होगा राम और रावण का युद्ध, कब होगा? अरे कमलोचन रावण बने तो अच्छा है। तो युद्ध फाइटिंग सीन बहुत मजे से देखते हैं लोग, अभी क्या होने वाला है, मालूम है सब रावण मरने वाला है, लेकिन फिर भी उतने उत्साह के साथ देखते हैं, है कि नहीं? तो ये जो फाइटिंग होता है उसमें जब असुरों का जब मृत्यु होता है, मृत्यु के पहले कभी गिरता है, कभी हारने वाला होता है, उस समय बड़ा मजा आता है। ये सृष्टि जैसे हुआ, सबसे पहला भगवान ने कौन सा लीला को दर्शाया? रासलीला नहीं दिखाया, क्या दिखाया? ये फाइटिंग सीन दिखाया सारे जगत को, चलो मैं अभी फाइटिंग सीन, ये फाइटिंग लीला दिखाया उन्होंने। जब वो लीला चल रहा था मधु और कैटब और कृष्ण बीच में, जब फाइटिंग चल रहा था उस समय, भगवान के एक परम भक्त दर्शन कर रहा था, उनका नाम है जाम्बवान। जाम्बवान कृष्ण को बड़े एंकरेजमेंट दे रहे थे, ये पीछे जा रहे देखो मधु आ रहे, इसको मारो इसको मारो, और इधर कैटब आ रहा है इधर से मारो, फिर पीछे देखो सावधान रहो। जब मधु और कैटब भगवान उठा के फेंक देते, ताली मार के बोल देते वाह वेरी गुड कंग्रेचुलेशन, जैसे कोई दो टीम खेलते हैं तो ये फैंस होते हैं ना, कोई सिक्सर मारता है तो वाह एकदम उत्साह देते हैं, बाद में खेल समाप्त होने के बाद जीतने के बाद कैप्टन बोलता है आई थैंक ऑल द फैंस, क्योंकि उनका उत्साह से मैं जीता। तो वैसे ही पूरा युद्ध होने का, मधु फेटक को बहुत प्रयास किए, भगवान के शरीर से पसीना आ रहा था, आके जाम्बवान को बोलने लगे थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, तुम्हारा जो उत्साह है ना उसकी वजह से मैं जीत पाया। तो भगवान ने कहा तुम्हारा तुम मेरे फैन हो ना, जाम्बवान को कहा तू क्या वरदान चाहिए? मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं। जाम्बवान ने कहा मुझे एक ऐसा वरदान दिए, जहां जहां आपका फाइटिंग सीन होगा ना उधर मुझे दर्शन दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं। भगवान की कितने भी युद्ध हुए कितने भी फाइटिंग सीन है, उधर स्पेक्टेटर कौन था? जाम्बवान। क्योंकि बड़ा मजा आता है आपका, आपका जो फाइटिंग सीन है उस प्रकार का कोई हीरो है ही नहीं। बहुत सारे हीरो लगाते हैं विलन को मारते बाद खुद मर जाते हैं, है कि नहीं? अभी कोई मरा तो ऐसे बहुत सारे मरते हैं, काय का हीरो कौन सा किस प्रकार का हीरो है? तो वैसे हीरो को मानने की कोई जरूरत नहीं, लोग रोते हैं अरे मर गया, कौन सा हीरो है? तो जितने भी ताकत हीरो है वो सब जीरो है, वो मर गए, मरने वाले हैं। लेकिन असली हीरो कौन है? कृष्ण है। जयदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं गीत गोविंद में, नायक नायका नायकन, नायक करते हीरो, रियल हीरो इज कृष्णा, वास्तव नायकम मिति प्रणति, मैं प्रणाम करता हूं जो वास्तविक नायक है, वास्तविक हीरो है। तो ये जामवान के हीरो कौन है? कृष्ण है। और जहां जहां ये हीरो विलन के साथ फाइटिंग करते ये उनको वरदान मिला। और बाद में जामवान ने कहा कृष्ण को, मुझे और एक वरदान चाहिए, लास्ट जब होगा ना आपका सीन, लास्ट फाइटिंग सीन मेरे साथ होना चाहिए। तब जाम कृष्ण ने किया, ठीक है लास्ट फाइटिंग सीन जो है जब मैं आऊंगा, स्वयं आऊंगा, तब आपको आपके साथ फाइटिंग करूंगा मैं। ऐसे भक्त जो चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वैसा इच्छा थी उनकी। लेकिन बड़ा मजा आता है जब फाइटिंग सीन होता है, जैसे बच्चों को सुनाइए किस प्रकार कृष्ण ने असुर को मारा, वो असुर को मारा, ये असुर को मारा, उनको बड़ा मजा आता है भक्तों को असुरों को वध करने का जो सीन सुन के। तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान वो फाइटिंग सीन करते हैं और असुरों को मारते हैं। कौन सा कारण होगा? पांच। पहला कौन सा था भूल गया कि नहीं? याद है कि नहीं? भूल गया लगता है। पहला कौन सा था? पृथ्वी का रक्षा करना, पृथ्वी भारनाशम कुंदा। दूसरा असुरों को भलाई के लिए उनको उद्धार करना। तीसरा भक्तों को संरक्षण करना, क्योंकि असुर जो है भक्तों को परेशान करते हैं। और चौथा भक्तों की इच्छा, असुरों की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना। और पांचवा कौन सा है? हाँ, भक्तों को आनंद प्रदान करना। अभी छठा कारण सुनिए, ये बड़ा रसमय कारण है। जब कोई फाइटिंग सीन होता है ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा जो हीरो है अंततः हीरो जो है विजय होता है, लेकिन बीच में कभी कभी वो विलन भी थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है और हीरो को परेशान करने लगता है, हीरो को भी खतरे में डाल देता है, तब सारे भक्तों टेंस हो जाते हैं, क्या हो गया है कि नहीं। जब भगवान कालिया दमन कर रहे थे उस समय सबसे पहला कालिया ने क्या किया? कृष्ण को अपने चंगुल में फंसा दिया था। उस समय नंद महाराज यशोद सब लोग आए, जैसे कृष्ण को उन्होंने देखा इस प्रकार कालिया के चंगुल में फंसे हुए, वो भी यमुना की नदी के बीच में, कृष्ण को इस प्रकार खतरे में देख के यशोदा नंद महाराज सब बेहोश हो गए। बेहोश हो गए क्यों? क्योंकि ऐसा उनको लग रहा था कि उनका प्राण उधर फंसा हुआ है, क्योंकि कृष्ण उनके प्राण है, ब्रजवासियों का प्राण है। तो कृष्ण इस प्रकार अपने आप को खतरे में डाल के भक्तों के हृदय में जो उनके प्रति प्रेम है उसको बाहर प्रकाशित करके उभार के बाहर लाते हैं। भक्तों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसकी घनिष्ठता को बढ़ाने के लिए कृष्ण अपने आप को एक खतरे में डालते हैं। होता है ना, बच्चा आप घर में खेल रहा है तो मां अपने काम में व्यस्त है, अगर उसको चोट लग जाता है, रोने लगता है, तो बच्चा मां तुरंत आकर उसको प्यार करने लग जाती है। कभी कभी बच्चा ऐसा करता है कि मां उसको ध्यान नहीं देती तो ऐसे कुछ दर्द हो गया कर तो रोना शुरू करते, मां के प्यार करते शांत हो जाता है कि नहीं। यानी अपने आप को खतरे में, कृष्ण अपने आप को इसलिए खतरे में डालते हैं ताकि भक्तों के प्रति जो प्रेम उभर के बाहर निकले, उनके भक्तों की जो प्रेम है, उनकी घनिष्ठता है, वो तीव्र हो जाए। ये कौन सा कारण हुआ? छठा कारण। अभी सातवां सुनिए। आप बोल रहे हैं कब तक चले गए? सातवां कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, मान लो कोई बहुत अमीर है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति होता है, मैं अपना जो धन है ऐश्वर्य दिखाऊं, दिखावा दिखाने की, देखा मैंने अच्छा कपड़ा पहना, मालूम है ऐसा कपड़ा है किसी पास? तो लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐश्वर्य है, सुंदरता है, उसको दिखावा करना, ये स्वभाव है हर जीव का, हर व्यक्ति का स्वभाव है, दिखाना चाहते, देखो मेरे पास ये है, आई एम सो वंडरफुल, मैं आई एम सो रिच, हाँ मैं इतना सुंदर हूं, अपनी सुंदरता को प्रकाशित करना चाहते। अंग्रेजी में उसको बोलते शो ऑफ, समझते हैं शो ऑफ, एवरीवन वांट्स टू शो ऑफ, भले ही अंदर उनके खाने के लिए नहीं, लेकिन बड़ा होंडा गाड़ी में घूमेगा, मर्सिडीज में घूमेगा, एवरीवन वांट्स टू शो ऑफ, आई एम रिच, आई एम स्ट्रांग। अगर कोई बॉडी बिल्डर है, वो ऐसा कपड़ा पहन के जाता है, देखो मेरे पास ऐसा है, शो कोई सुंदर है तो भी दिखावा करना चाहता है, सब लोग देखे देखो मेरे पास ऐसा है। लेकिन बॉम्बई में बहुत लोग ऐसा करना चाहते हैं लेकिन कुत्ता भी नहीं देखता। लोग ऐसे कभी ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, सोचते हैं कि बस सारा दुनिया मुझे ही देख रहा है, दे वॉन्ट टू शो ऑफ, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। एक जगह मैं इस वक्त एक व्यक्ति बस स्टैंड में था, बस का इंतजार कर रहा था, एक बच्चे से बात कर रहा था। मैंने कहा कि लोग जो है अपनी भौतिक सामर्थ्य को दिखाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहा इतना दिखावा करना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि बस मैं ही दुनिया का केंद्र में, सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, हर व्यक्ति की ऐसी भावना है। मैंने देखा है उधर एक बहुत अच्छा गाड़ी खड़ा था, कोई बहुत महंगी गाड़ी खड़ा था, कौन सा मालूम नहीं मुझे। मैंने कहा देखो उधर एक कुत्ता जा रहा है, वो पेशाब करने के पहले कुत्ता सूंघता है। मैं दिखा है देखो, ध्यान से देखो, वो सूंघते सूंघते गया, उसके बाजू में एक साइकिल खड़ा था, वो साइकिल के ऊपर पेशाब किया। मैंने कहा वो कुत्ता ने ये देखा कि वो गाड़ी जो है उसके लिए पेशाब करने के लिए भी लायक नहीं है। ऑब्जर्व करो, और ये गाड़ी में जो घूम रहा है वो सोचता है कि बस मेरे पास जो गए वो किसी के पास नहीं है। हाँ, ये सब केवल मेंटल कॉन्कॉक्शन है, भविता है, भगवान कहते हैं मनोगतान, इट इज जस्ट मेंटल कॉन्कॉक्शन। देखा मेरे पास ऐसा मोबाइल है तो क्या हुआ, व्हाट इज इट मैटर। और कोई व्यक्ति है जिसके बाद उससे अच्छा मिल गया तो तुम्हारा मुंह छोटा हो जाएगा, इसको बोलते चीप प्लेजर। लेकिन फिर भी ये भावना है, ये कुछ भी कहो लेकिन एवरीबडी हैज गॉट दिस थिंग, शो ऑफ। जानते हो हम कौन है, हम ठाकुर है, तंबुकुर है, जो समथिंग, हम जानते हैं हम ब्राह्मण है, हम ये है, हमारे पास ऐसा है, सब लोग यही यही, और कोई कहानी नहीं है उनके पास, सब लोग जब मिलते हैं यही अपना वखान करते हैं। तो ये भावना कहां से आई, क्योंकि हर चीज भगवान से आता है, क्योंकि ये जो भावना है टू शो ऑफ, ये अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने ऐश्वर्यों को, अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करना, मूल रूप में कृष्ण में है, क्योंकि उसके उनके अंदर है, इसलिए अंदर हमारे अंदर है। लेकिन तकलीफ ये है जब कृष्ण शो ऑफ करते कुछ है, लेकिन जब हम करते हैं थोड़ा उस प्रकार होता है, जैसे नारद मुनि का कहानी जानते हो, वो आए थे स्वयंवर में वर ढूंढने के लिए, बिल्कुल वही है। असल में वो जो लीला है आपको मालूम होगा, वो लीला नारद जी का मोह हो गया था, क्योंकि उन्होंने बड़ा वखान किया था, मेरे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है आपके जैसा कोई है नहीं, सच में शिव जी के पास भी गए थे, मेरे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है, आप क्या गृहस्थ हो, ऐसा उन्होंने कहा। तब शिव जी को कहा भगवान को रहना है, अभी कुछ करना पड़ेगा। अभी नारद जी आ रहे थे कैलाश से, तो एक बहुत सुंदर नगरी जिसका नाम है श्रीनगर, कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, वो गढ़वाल वाला श्रीनगर है, बद्री जाने के रास्ते में पड़ता है श्रीनगर गढ़वाल। उधर देखा उन्होंने बड़ा सुंदर स्वयंवर चल रहा है, विश्वमोहिनी का स्वयंवर चल रहा है। तो नारद जी को ऐसा लगा मुझे जाना पड़ेगा, अभी इतना सुंदरी है, इनका इनसे विवाह करना पड़ेगा। तो मैं तो इतना तो सुंदर नहीं हूं, चलो जाता हूं। नारायण के पास गया, उन्होंने मुझे बस इतना सुंदर रूप दो, आपकी जैसा सुंदर रूप दो, क्योंकि आप जैसा सुंदर कोई तो है नहीं, तो मैं भी अपना सुंदरता को प्रकाशित करना चाहता हूं। नारायण का चलो मैं तू सुंदर बना दिया, तथास्तु। नारद जी गए बैठे स्वयंवर में, तब वो विश्वमोहिनी और सब लोग हंस रहे। नारद जी ने सोचा कि सब लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे अलावा और कोई तो, और किसी को तो चुनेगे नहीं है। वो सीधा जाके स्वयं भगवान आए थे उनके हाथ में, नहीं स्वयंवर हो गया। नारद जी को बहुत क्रोध आया, वो क्रोध में कृष्ण के पास गए, ऐसा क्यों किया आपने। तो कृष्ण ने देखा, आप बोला कि जाके तुम अपने चेहरे को देखो, तो देखा है बंदर का मुंह था। तो यही है हमारा हालत, तो कृष्ण के अंदर ये शो ऑफ यानी अपने आप को प्रदर्शित करने की स्वभाव है। तो गोलोक वृंदावन धाम में अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं, सारे भक्त उनका सुंदरता को गुणगान कर आस्वादन कर रहे हैं, गोपियां उनकी सुंदरता को हर क्षण उनकी आंखों के द्वारा पीती हैं और उनका ऐश्वर्य को प्रदर्शन हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है और उनका यश का प्रकाश हर व्यक्ति कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। लेकिन उनके छह ऐश्वर्यों में पांच के पांच जो ऐश्वर्य है गुण है उनका प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक गुण है भगवान का सर्वशक्तिमत्ता, उसका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। उसको प्रदर्शन करना है तो फाइटिंग होना चाहिए, तभी तो है ना युद्ध होगा, तभी तो होगा ना प्रदर्शन। गोलोक वृंदावन में सब भक्त है कृष्ण के, वैकुंठ में उनके भक्त है, अभी कहां प्रदर्शन करेंगे, फाइटिंग होगा तभी होगा ना। तब भगवान सोचने लगे अभी मुझे कुछ इच्छा है, अपना जो शक्ति है उसको थोड़ा सा प्रकाशित करो, प्रदर्शन करूं, आई वॉन्ट टू शो ऑफ माई स्ट्रेंथ। जैसे होता है ना कभी बहुत ज्यादा खा लेता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसके हाथ में खुजली होता है, बोले हाथ में खुजली है क्या ऐसा बोलते हैं, तो भगवान के हाथ में खुजली होने लगा। किसके साथ फाइटिंग करो, अभी कोई मिलता नहीं है इधर। और भगवान के दो भक्त है जय विजय, उनके मन में इच्छा मालूम पड़े, अब भगवान के मन में ऐसा इच्छा है। सेवक वो है जो बिना बोले समझ जाता है कि मेरा मालिक का मेरा जो सेव्य है उनके मन में क्या इच्छा है, बोलने की जरूरत नहीं है, बिना बोले समझ जाते हैं। तो जय विजय के मन में ऐसी इच्छा है, भगवान के मन में ऐसी इच्छा है कि युद्ध करने की या किसी से झगड़ा करने की है, उनको फाइटिंग करना है, तो इच्छा को कैसे पूरा करे। जैसे भक्त के मन में इच्छा हुआ तो भगवान के मन में ऐसा इच्छा हुई कि उस भक्त के मन में जो इच्छा उसको पूरा करे। तो भगवान ने ऐसा योजना बनाया, कृष्ण ने ऐसा योजना बनाया कि चार कुमार कहीं और जा रहे थे, उनके हृदय में बैठे हैं भगवान, उनके मन में ऐसा इच्छा प्रदान, चलो नारायण को दर्शन करने जाते। तो चार कुमार आए तो आपको पूरा स्टोरी मालूम है, जय विजय ने क्या किया, अंदर नहीं जा सकते हो। तब चार कुमारों को आया क्रोध, उनको क्रोध कभी आता है क्या, नहीं आता, वो तो ब्रह्म में स्थित है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उनकी इच्छा से ऐसी लड़ाई। तो चार कुमारों ने कहा ये इस प्रकार का स्वभाव है, ये वैकुंठ में रहने लायक का स्वभाव नहीं है, आपको शाप देते हैं, भौतिक जगत में चले जाओ। तो उस समय नारायण आए, माफी मांग चार कुमारों से, मेरे सेवकों का गलती जो है मेरी गलती है। इसलिए भगवान की जो भक्त है उनका सेवक है उनकी गलतियों को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वभाव वो सोचते हैं उनकी गलती मेरा गलती है, ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा कि आप जो है ब्राह्मणों का शाप है, ब्राह्मणों के मुख से उत्पन्न हुआ जो शाप है वो सिद्ध कराना मेरा जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य है, आपको भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, तीन जन्म मेरे भौतिक जगत में जाओ और मेरे दुश्मनों के रूप में प्रकट करोगे, मेरी इच्छा को पूर्ण करोगे, तब यही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंत के रूप में प्रकट हुए और भगवान की जो इच्छा थी क्या इच्छा थी, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करे लोगों के सामने, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब लिया हुआ, इसलिए असुर को वध किया भगवान ने। क्यों, क्योंकि उनकी इच्छा को पूर्ण करना, उनकी ऐश्वर्य को क्या उनका जो शक्ति है प्रदर्शन करना है। कितना कारण हुआ, अभी सात हो गया, अभी आठ बोल रहे टाइम हो रहा है भाई, कितना हो रहा है अभी, आठ आठ ठीक है, आठ ही है, आठवां आखिरी है, चलिए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक तो आपने मजे से लीला सुने है कि नहीं, अभी हमारे लिए क्या है। असुरों का वध के पीछे भगवान का ये सब जितने भी हैं या मुख्यतः ये सब उनके अंतरंगिक कारण हैं, लेकिन बहिरंगिक कारणों में सबसे श्रेष्ठ ये असुरों को वध करने के पीछे क्या है, वो जब भगवान प्रकट होकर असुरों को वध करते हैं कि जब लीला करते हैं वो लीला लिपिबद्ध होता है, भागवत या महाभारत या रामायण अन्य पुराणों के रूप में लिपिबद्ध होता है। जब ये लीला लिपिबद्ध होता है भगवान की लीला, जब उस लीला को कोई पढ़ता है, पठन करता है या श्रवण करता है, तब क्या होता है, हमारे हृदय में जो असुर है उस असुर को भगवान उस लीला को श्रवण करने के द्वारा भगवान उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और उस भक्त के हृदय में जो असुरी स्वभाव है उस स्वभाव को नाश करते हैं। मान लीजिए भगवान का त्रिनावर्त को वध करने की लीला है, जब उस लीला को हम पढ़ते हैं, जब हम उस लीला को श्रवण करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर एक त्रिनावर्त बैठा है, एक अनर्थ है, त्रिनावर्त बैठा है, उस त्रिनावर्त को वो वध करते हैं। अनर्थ निवृत्ति, भक्तों का जो अनर्थ निवृत्ति को सहयोग देने के लिए भगवान लीलाओं को रचाते हैं, ताकि ये लीला के द्वारा लोग इस लीलाओं को श्रवण करें और उस अनर्थों के ऊपर वो जय प्राप्त करें, क्योंकि इस अनर्थों के ऊपर जय प्राप्त करना हमारा बस का काम नहीं है, केवल कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए हमको ये कृष्ण असुरों को वध करने की जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने के द्वारा हमारे अंदर असुरी स्वभाव है वो नाश होता है। असुरी स्वभाव जब तक नाश नहीं होता है तब तक कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं होता है। जो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के पहले या प्राप्त करने के लिए हम जो बीच में जो रुकावट है वो क्या है, वो अनर्थ, उसको नाश कैसे किया जाए, वो तभी नाश होगा जब कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में आएंगे, उसको नाश करने के लिए आएंगे। और कैसे नाश करेंगे, जब हम उन लीलाओं को पढ़ेंगे। ये जो त्रिनावर्त है वो विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ अहंकार को सूचक है, यह अनर्थ है। और जैसे त्रिनावर्त लीला पढ़ेंगे, हमारे अंदर अगर विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ अनर्थ या अहंकार है तो उसको भगवान नाश करते हैं। कालियागतमन का लीला पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण हृदय में जो है ईर्ष्या को नाश करेंगे। अगर कोई शकटासुर को वध करने की लीला सुनेंगे, हमारे हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण शकटासुर के रूप में है, या भगवान श्री कृष्ण शकटासुर को वध करते, कौन से शकटासुर या क्या प्रवृत्ति है, गंदी आदतें हमारी, उसको नाश कर देते हैं। तो इसलिए भगवान असुरों को वध करते हैं। तो ये असुरों को वध करने की जो लीला है ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनर्थ में हमको सहयोग देता, अनर्थों का नाश, भक्तों का अनर्थ निवृत्ति में सहयोग देने के लिए भगवान असुरों को वध करते हैं। अभी हमने भगवान श्री कृष्ण असुरों को क्यों वध करते हैं उसके पीछे आठ कारण सुने। आठ कारण संक्षिप्त में क्या क्या है, सबसे पहला पृथ्वी भार, पृथ्वी के ऊपर भार को नाश करने के लिए। दूसरा असुरों को उद्धार करना। तीसरा भक्तों की रक्षा करना। चौथा असुरों की इच्छा जो है देश और ईर्ष्या की इच्छा है वो पूर्ण करना। पांचवा भक्तों को आनंद प्रदान करना। छठा भक्तों के प्रति उनके जो प्रेम है, भक्तों का जो प्रेम है उनके प्रति, वो उसकी घनिष्ठता को बढ़ाना। सातवा उनका शक्ति का प्रदर्शन करना। और आठवा अनर्थ निवृत्ति में भक्तों को सहयोग देना। इसलिए अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो क्या करना चाहिए, हमको रोज कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। कृष्णा बुक जो है प्रभुपाद जी उनको बहुत भागवत का अनुवाद कर रहे थे, और जैसे पहला स्कंद का अनुवाद हो गया, तात्पर्य हो गया, टीका हो गया, बहुत बीमार पड़े प्रभुपाद, बहुत बीमार पड़ गए। तब उनको मालूम नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं, तो उन्हें सोचा हाँ अगर मैं अभी अपना शरीर त्याग कर दूं, जो सबसे अमूल्य वस्तु है सारा संसार में वो भागवत, उसके अंदर भी सबसे गुह्य है भागवत का जो दसवां स्कंद, वो नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, तुरंत दसवां स्कंद का अनुवाद करना शुरू कर दिया। इसका ये भी नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है कि मैं उनका एक सार संकलन, दसवां स्कंद के जो सार हैं उसको निकाल के ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करूं। करके तुरंत प्रभुपाद जी ने दसवां स्कंद का जो सार संकलन है, समरी स्टडी है, सारे लीलाएं उन्होंने लिपिबद्ध किया कृष्णा बुक के रूप में। लिपिबद्ध करके उन्होंने कहा इसको छापने के लिए, कृष्ण अति सुंदर है तो विश्व का सबसे बड़ा जो मुद्रणालय है, प्रेस है, उधर होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा मुद्रणालय था डाइनिपॉन कंपनी जापान का। तो प्रभुपाद जी उधर जापान गए थे, अमेरिका से जापान क्यों कहते हैं खाली जो कृष्ण बुक है, कृष्ण अति सुंदर है, वो कृष्ण बुक भी अति सुंदर होना चाहिए। तो उधर उस कंपनी में जाके वो प्रभुपाद जी ने नेगोशिएशन करके उधर